بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، انسان کا اور رب تعالی کا جو تعلق ہے اس پہ بارہا بات ہوئی کہ وہ کلیتاً ایک آقا اور اس کے بندے کا تعلق ہے، آقا اور غلام کا سا تعلق ہے، لیکن جیسا رب تعالی نے خود فرمایا کہ انسان بے صبرا ہے، تو جب ہم پر مشکل حالات آتے ہیں تو بجائے یہ یاد کرنے کے کہ رب تعالی نے ہمیں اتنا عرصہ خوشحالی دیے رکھی ہے، اگر یہ چار دن مشکل کے آ گئے ہیں تو رب تعالی انہیں بھی راحت میں بدل دے گا، کوئی کام ہمارا رک جائے تو بجائے یہ یاد کرنے کے کہ رب تعالی صبح سے شام تک ہمارے کتنے کام سنوارتا رہتا ہے اور اکثر و بیشتر کام خود بخود سمر جاتے ہیں ہماری بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی تگ و دو کے، اللہ تعالی اپنے دوسرے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ اس آدمی کا یہ کام کر دو اور وہ کام ہمارے خود بخود ہو جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک ہم لاتعداد ایسی چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں ایک کوئی کام ہمارا اٹکا، ذرا سی کوئی ایک تکلیف آئی، تو ہم رب تعالی سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اور مزہ یہ ہے، جو سب میں اس میں خوبصورت بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان رب تعالی کا گلہ اور شکوا بھی بیان کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کو یہ یقین دلاتا کہ میں تو صبر شکر سے کام لیتا ہوں، رب کا شکوا کہیں بیان نہیں کرتا۔ یہ ہمیں خوش فہمی ہے۔ اگر ایک شخص، ایک آپ کا ملازم ہے، اس کو آپ نہ صرف اس کی سیلری آن ٹائم دیتے ہیں بلکہ اس کی دوسری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اس کے تمام کاموں کا دھیان رکھتے ہیں، اسے لک آفٹر کرتے رہتے ہیں، کہیں کسی وجہ سے اگر آپ اس کی ایک مہینے کی سیلری وقت پر نہ دے پائیں اور وہ آپ کے دوستوں کے پاس جا کر یہ کہے کہ ذرا میرے مالک سے میری سفارش تو کر دیں کہ وہ مجھے سیلری دے دے، تو اس کو ہم کس زمرے میں رکھیں گے بات کو؟ یہ گلہ شکوا ہوگا یا شکر گزاری ہوگی آپ کی؟ ایک ایسا ہی درویش تھا، مولانا روم نے یہ حکایت بیان کی، ایسا ہی ایک درویش تھا اور ظاہر ہے کہ وہ درویشی کی کسی اعلی مقام پر نہیں ہوگا، تو اس پر گردش ایام کے تحت برا وقت آ گیا اور وہ فاقے کر رہا تھا۔ ایک روز وہ کہیں راہ گزر کے قریب کھڑا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت ہی زرق برق لباس پہنے ہوئے اور سنہری बेल्ट्स बांधे हुए कमर के गेट और इंतहाई खूबसूरत घोड़ों पर सवार जा रहे हैं। तो उसको ये ख्याल गुजरा कि ये लोग जो जा रहे हैं ये गालिबन शहजादे होंगे। तो उसने किसी से पूछा कि शहजादे हैं इस मुल्क के? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, ये हरात के गवर्नर के गुलाम हैं जो। तो इसको बड़ी हैरत हुई कि ये गवर्नर कितना दरिया दिल और सखी है और कितना अच्छा है कि अपने गुलामों को इस खूबसूरती से लुक आफ्टर करता है। बात खत्म हो गई। कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि हरात के गवर्नर पर करप्शन के इल्जामात लग गए और बादशाह ने उसके कैदियों को भी गिरफ्तार किया और वो उनसे ये उगलवाना चाहता था कि गवर्नर किस किस तरीके से करप्शन कर रहा था। तो उन तमाम कैदियों को उसने पकड़ा और पकड़ के शदीद अजियतें देनी शुरू कर दी और उसकी हड्डियां तक उनकी तोड़नी शुरू कर दी। लेकिन उसके गुलामों ने ये राज नहीं खोला कि उनका आका कैसे करप्शन करता था। तो इस दरवेश ने वो माजरा देखा तो उसको आवाज आई कि तुम अपने रब को सखावत और खाजगी इस गवर्नर के जरिए सिखाना चाह रहे थे, पहले खुद तो उसके गुलामों से गुलामी के आदाब सीख लो। ये शिकायत में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। जब हम क्लास 6-7 में पढ़ते थे तो अंग्रेजी की किताब में हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो हम रब के साथ गिले शिकवे तो करते रहते हैं लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि क्या हम खुद बंदगी की शराइत पूरी करते हैं। दरवेश और फकीर इसीलिए अपनी जात पर हमेशा तनकीदी नजर रखता है। फकीर दूसरों पर तनकीद नहीं करता, वो अपनी जात पर तनकीद करता रहता है क्योंकि उसकी नजर अपनी खामियों पर रहती है और वो अपनी खामियां दूर करने में मसरूफ रहता है, इसलिए उसको किसी दूसरे की खामी नजर नहीं आती और वो किसी दूसरे की कोई खामी बयान नहीं कर पाता। तो ये जो आदाब बंदगी है इसका सीखना बड़ा जरूरी है। एक ऐसी शिकायत है जो बहुत से लोगों को है, वरना शायद मैं इसे इनफरादी शिकायत कह के आपका वक्त जाया ना करता। यस नो दुआ के लिए मुख्तस एक मिनट में तमाम सवालात का जवाब कैसे मिल सकता है? क्या मुर्शिद साहब को इल्म हो जाता है कि मुरीद के दिल की बातों का इस एक मिनट का बेहतरीन इस्तेमाल क्या किया जाए? भाई ये शिकायत और शिकवा न सिर्फ आपका है बल्कि और बहुत से लोगों को भी शिकायत होगी अगरचे उन्होंने बयान नहीं किया। इस सिलसिले में मैं एक गुजारिश ये कर देता हूं कि मालूम नहीं शायद उस वक्त मैं क्लास सिक्स में था या सेवन में, तो एक कहानी हमने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी कि एक जंग लड़ी गई जिसमें बहुत से मुसलमान जख्मी हो गए, फतह हो गई, मुसलमानों की जख्मियों को इकट्ठा किया गया और वो एक लाइन में लेटे थे, उनकी नर्सिंग हो रही थी, उनके जख्मों की मरहम पट्टी की जा रही थी। तो दफतन एक तरफ से आवाज आई जख्मी सिपाही की, अल आतश। तो वो जो जख्मियों की देखभाल कर रहे थे उनमें से एक साहब दौड़ते हुए गए पानी का प्याला लेके उनके पास। तो जख्मी ने प्याला पकड़ा तो एक और दूसरे जख्मी की आवाज आ गई, अलतश। तो जख्मी ने कहा कि मेरे इस भाई को मुझसे ज्यादा इस पानी की जरूरत है, ये पानी उसे दे दो। तो प्याला लेकर दूसरे जख्मी के पास गए तो तीसरे की आवाज आई, तो उस जख्मी ने कहा कि नहीं, उसे मेरे मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत है, उसे जाके दे दे। तो यूं करते करते वह आखिरी जख्मी तक जा पहुंचा। तो आखिरी जख्मी ने कहा कि जिसने सबसे पहले पानी मांगा था, इस पानी पर उसका हक मुझसे ज्यादा है, ये पानी उसी को जाके दे दे। तो वो लेके जब गया तो उसने देखा कि वो जख्मी अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तो दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, हत्ता कि आखिरी जख्मी तक पहुंचा तो उतनी देर में सभी अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो मुसलमान के किरदार में दूसरों के लिए इसार और कुर्बानी का जज्बा इतना ज्यादा होता है। ये सही है कि हमें अपने दुखों की तकलीफ बहुत होती है और हम ये चाहते हैं कि हम सभी प्रॉब्लम्स एक ही वक्त में बयान कर दें, लेकिन मसला ये है कि लोग एक वक्त में 600-700 लोग यहां होते हैं। अगर मैं हर आदमी को 10 मिनट दे दूं तो 7000 मिनट चाहिए, और 7000 मिनट को जरा आप 60 पर तकसीम कर लीजिए, 110 घंटे चाहिए, और 110 घंटों को 24 घंटे पर तकसीम कीजिए तो 4.5 दिन दुआ चलेगी। जो इंसान इतवार को 1 बजे आया है तो सबसे आखिर में जिसका नंबर है उसकी बारी आते आते जुमे की शाम हो चुकी होगी। तो अगर 2 मिनट भी दे दिए जाएं तो 1400 मिनट चाहिए है। 1400 मिनट को आप अगर 60 पर तकसीम कर लें तो 75 आवर्स चाहिए। 75 आवर्स का मतलब ये हो गया कि 3 दिन और 3 घंटे। अगर मैं नॉन स्टॉप दुआ करूं, दिन रात बैठा रहूं, तो 3 दिन और 3 घंटे के बाद आखिरी आदमी की बारी आएगी। तो जो संडे दुआ कराने शरीफ आदमी आया है उसकी बारी वेंसडे को सुबह 10 बजे के करीब आएगी। अगर आप इंतजार कर सकते हैं यूं यहां बैठ के, बिस्मिल्लाह मैं 2 मिनट भी देने को तैयार हूं, मैं 10 मिनट भी दे दूंगा। और अगर कहीं अल्लाह ने हमारे दिल में ये बात डाल दी है कि मेरे बाद बहुत लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, तो मैं अपनी सबसे जरूरी बात बगैर तमहीद में गए मुख्तसरन बात कर दूं तो दूसरे सबको सहूलत हो जाएगी। तो हमें हार्डली 10 सेकंड चाहिए दुआ के लिए। मैंने शायद यहां एक बार अर्ज किया था कि लोगों को बहुत शौक होता है कि शाह साहब आपके साथ हमने फला मजार पे जाना है। बिस्मिल्लाह आ जाइए, मुझे तो एतराज नहीं है, लेकिन वो तंग हो जाते हैं। मैं फर्ज कर लीजिए तुर्की में जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के मजार मुबारक पे गया हूं। 5.5 घंटे की फ्लाइट है, 1 घंटा पहले यहां लग जाएगा, 1.5 घंटा 2 घंटे जाने में होटल तक लग जाएंगे, तो टोटल ट्रेवल टाइम मेरा तो कोई 8.5 घंटे बन गया। अब 8.5 घंटे सर्फ करके मैं वहां गया हूं, तो लोग परेशान उस वक्त होते हैं मेरे साथ गए हुए कि जब ये देखते हैं कि मैं हार्डली 1.5 मिनट वहां ठहरा हूं। सलाम अर्ज की, जैसे सुन्नत है कि अस्सलाम वालेकुम, या हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फातिहा पढ़ी और उसके बाद अर्ज किया कि हजूर मुझे अब रुख्सत की इजाजत है, अस्सलामु अलैकुम। हाजिरी हो गई, अगली फ्लाइट पकड़ी, पाकिस्तान आ गए। लीजिए, तो अगर कहीं मैं जाऊं किसी के पास दुआ कराने, तो मेरा तो काम इतना था कि दरवाजा खोलते ही अस्सलाम अलैकुम, दुआ कर दीजिए मेरी ट्रांसफर फला जगह हो जाए, अस्सलाम अलैकुम। लीजिए, लो, वक्त ही नहीं चाहिए कोई, 3 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड एंड दैट्स ऑल। मसला वहां पेश आता है हमें कि अब मैं गया तो हूं ट्रांसफर की दुआ कराने, अस्सलाम अलैकुम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी, आपके बच्चे ठीक हैं, सेहत कैसी रहती है आपकी? ठीक है। अच्छा जनाब, बात यह है कि मैंने असल में डॉन बॉस्को से ए लेवल किया था, उसके बाद फिर मैं फलां कॉलेज में चला गया, वहां से इंग्लैंड पढ़ने चला गया, वहां से आया तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में फलां महकमे में मुझे जॉब मिल गई, तो ये मैंने जॉब शुरू की थी 1901 में। साहब अब तरक्की 5-6 बार मेरी हो चुकी है, अब 4 साल हो गए इसी पोस्ट पे काम करते हुए, तो यहां बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे, अब दुआ कर दीजिए कि मैं ट्रांसफर हो जाऊं। बहुत अच्छा जनाब, आपने दुआ कर दी? कि जी जनाब कर दी, जरा खसूसी दुआ कर दें, एक बार फिर दुआ कर दें। बहुत अच्छा जनाब, वो फिर दरवाजे तक पहुंचे, जनाब जरा दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। बहुत अच्छा जनाब, असल में प्रॉब्लम हमारी वहां शुरू हो जाती है कि हम इसी तरह, आप देखिए हमारे मजे की चीज है, इसमें तनकीद नहीं कर रहा मैं, तो मजे ले रहा हूं क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी हूं, 18 करोड़ का हिस्सा हूं। कि किसी मरीज से गलती से जाके आदमी ये पूछ ले कि भाई क्या हुआ तुम्हें, अब वो जो बीमारी की एक लंबी तफसील, फिर इलाज की तफसील, डॉक्टर की बैकग्राउंड, उस पर जितना खर्चा आज तक आया है, वो तकरीबन 1.25 घंटे में हम तफसील सुनाते हैं। वो मुझे शुजात की एक बात याद आती है, हमारे घर के थोड़े फासले पर एक रेलवे क्रॉसिंग है कैंट, जो कैंट और गुलबर्ग के दरमियान है, तो वो कहीं मेरी तरफ आ रहे थे, तो वहां उस रेलवे फाटक की तरफ से आए तो फाटक बंद था, तो इंतजार में खड़े हो गए, और भी बहुत से गाड़ियों वाले खड़े थे। तो जो बाइसिकल पर सवार हजरात थे वो बाइसिकल को उठा के तो रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे थे। एक साहब औरों की तरह बाइसिकल उठा के उस फाटक को क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमारा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, कि वो बंदा ट्रेन से हार्डली एक फुट से बचा। तो हम सबकी चीखें निकल गईं कि गया आदमी, बच गया। ट्रेन गुजर रही थी तो आपस में हमने कहा कि इन साहब को कहीं बहुत जल्द पहुंचना है, मालूम नहीं क्या इमरजेंसी है इस शरीफ आदमी के साथ जो इतनी जल्दी में से कि उन्होंने जान की परवाह नहीं की है और गुजर गए। तो ट्रेन के गुजर जाने के बाद फाटक खुल गया, ये सब लोग चले। तो हाशमी साहब बताने लगे कि जब हमने फाटक क्रॉस किया तो वहां एक मजमे वाले ने मजमा लगाया था, तो हमने उन बुजुर्ग को वहीं खड़े देखा कि वो मजमा सुन रहे हैं। तो वो जो हमारा ये अंदाज है जिंदगी का, मालूम नहीं किसने सुनाया था किस्सा कि उनके पास कुछ फॉरनर गेस्ट आए हुए थे, उन्हें लेके वो घुमाते रहे। तो आखिरी दिन उनके एक मेहमान ने कहा कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत मुल्क है आपका, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज, लेकिन एक जो चीज मुझे समझ नहीं आई कि यहां हर आदमी बहुत जल्दी में है। तो अगर हम कहीं इन तमाम पहलुओं पर नजर डाल लें तो एक मिनट में चार पांच सवाल आसानी से पूछे जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम ना तो तमहीद बांधें और ना एक लंबी चौड़ी बैकग्राउंड बताएं, तो हमारा मसला हल हो जाता है। और अगर हम ये सोच लें कि मैं अगर तमहीद न बांधूं एक बड़ी मुख्तसर सी बात करके, अपना मुद्दा तो बयान हो जाता, अगर सुनने वाला अटेंटिव है, आपकी तरफ मतवज्जो है, तो कोई वजह नहीं है कि अगर मैं इतनी ही तेजी से बात करूं। और मेरा तजर्बा हुआ भी है फकीरों के बारे में, बल्कि मेरा तजर्बा जो सब में खूबसूरत है, और मैं उन औलिया किराम का बड़ा मशकूर हूं जिन्होंने मुझे ये सबक सिखाया था। मैं अपने मुर्शिद साहब के पास जाता था तो कोई दुनियावी मेरा मसला था तो मैंने उनसे अर्ज की कि हजूर ये फला एक दिक्कत आ रही है, दुआ फरमा दें कि वो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के सदके दूर फरमा दे। दुआ हो गई। कुछ अरसे के बाद फिर कोई और मसला आया तो मैंने फिर कह दिया। तो जहां पर मुर्शिद साहब के पास से उठ के बाहर आए तो गाड़ी के पास मेरे मुर्शिद साहब के पास कुछ औलिया इकराम हसूल इल्म के लिए भी आते थे, तो वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। तो गाड़ी में बैठ रहा था तो एक साहब ने मुझे कहा कि शाह साहब है तो गुस्ताखी लेकिन हम आपसे एक अर्ज करें, आप अपने मुर्शिद साहब से दुआ के लिए ना कहा करें। तो मैंने उनसे वजह नहीं पूछी, एक आदमी मुझे एडवाइस कर रहा, गाइड कर रहा है तो मैं वजह क्यों पूछूं, जाहिर है वो मुखलिस है तो मुझे गाइड कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि बहुत अच्छा, उसके बाद फिर मैंने दुआ के लिए कभी नहीं कहा मुर्शिद साहब के लिए। उस वक्त चीजें शायद समझ में नहीं आई थी मेरे, लेकिन जो जो वक्त गुजरा तो पता ही लगा कि ये दुआ का सिलसिला तो ये हमारी सिर्फ तसल्ली ही है इसमें कि हमने दुआ के लिए कह दिया किसी वली अल्लाह को, किसी फकीर को। इसकी मिसाल मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि एक आदमी है रोज आता आपके पास, अस्सलाम वालेकुम, और बड़ी लजाहत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी नरमी, खूबसूरत लबो लहजे में आपसे कहते हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, बस जरा मैं आपको सलाम करने आया था, और उठते हुए आपसे कहे कि जरा 100 रुपया तो दे दीजिए। फिर अगले दिन आ जाए, फिर वो ये कहे, हर रोज आए इसी तरह और आपसे हर रोज कुछ ना कुछ मांगे। एक और आदमी इसके मुकाबले पर आपके यहां आता है तो दरवाजे पे खड़ा होता है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, बस मैंने आपको सलाम करना था, और गया। ना वो बैठ रहा है, ना आपका अहवाल पूछ रहा है, ना आपसे कोई बात करता है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, बस सलाम करना था जनाब, अस्सलाम वालेकुम, चला गया। अब आप ये बताइए कि ये पहला आदमी जो रोज आपसे मांग रहा है, उसके बारे में आपका रवैया क्या होगा? क्या आप चिढ़ जाएंगे कि भाई तुम, या तो ये ना कहो कि तुम सलाम करने आए, सीधा कहो कि साहब मेरी जरूरत है, मैं उसके तहत आता हूं आपके पास, या जरूरत रोज बयान ना करो, कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी, चढ़ जाएगा। दूसरा आदमी जो है, आप उसको कितने दिन उसके सलाम को बर्दाश्त करेंगे? चौथे पांचवें दिन, हफ्ते 10 दिन के बाद आप उससे खुद पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई आपको कोई काम है मुझसे? वो पलट के कहे कि नहीं हजूर, नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी मोहब्बत का मारा आपके पास आता हूं सलाम अर्ज करने। तो कुछ दिन के बाद आप फिर अज खुद सबसे कहेंगे कि भाई इस आदमी का ख्याल रखना, ये जो रोज आता है सलाम करने, कभी इसका कोई काम हो तो कर देना। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। एक का आपने अपने चाहत से, अपने दिल से ये कहा कि अगर इसको कोई काम हो तो कर देना इसका, और दूसरे के लिए चढ़ गए आप। तो ये जो फकीर लोग होते हैं, ये जहनी तौर पर बहुत मसरूफ होते हैं। एक दूसरी बात यह है कि ये दुनिया को बहुत हकीर जानते हैं, दुनिया से मुराद माले दुनिया, इंसानों को नहीं। ये अपने ख्याल में खोए रहते हैं, किसी इल्मी नुक्ते पर गौर कर रहे होंगे, अल्लाह की कुदरत पर किसी चीज पर गौर कर रहे होंगे, रब की तरफ मुतवज्जो होंगे। तो जब आप या मैं किसी फकीर से दुनियावी दुआ के लिए कहता हूं, तो उसको अपने उस मकाम से हट के नीचे आके दुआ करनी होगी, जो उसके लिए कोई ज्यादा खुशी का सबब नहीं बनती बात। लेकिन अगर इसके बरक्स हम सिर्फ जाएं और सलाम करके उठाएं, तो यहां दो चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी फौरन, दो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। एक तो यह है कि फकीर के दिल में आपके लिए एक कदर और एक वैल्यू पैदा होगी, और वो अज खुद अल्लाह के हजूर दुआ करेगा कि या बारी ताला, तेरा ही बंदा बड़ी मोहब्बत से आता है मेरे पास, तो इस पे मेहरबानी फरमा और इसकी जिंदगी इसके लिए आसान कर दे। दूसरा एक सिस्टम है कि रब ताला बहुत वजादार है, बड़ा मरवत वाला है, बहुत लिहाज करने वाला है, बहुत शर्म हया है, तो उसको उसकी वजादारी यह है कि वो अपने दोस्त के पास आने वाले इंसान का ख्याल करता है कि मेरे दोस्त के पास आता है, उसकी वजादारी की शान यही है। तो रब की रहमत अज खुद उस आदमी पर होने लगती है, खुद ब खुद दुआएं होने लगती हैं, खुद ब खुद फायदे मिलने लगते हैं। तो हजूर, मेरी तो गुजारिश है, आपका ताल्लुक मुल्तान से है, मैं नाम आपका नहीं लूंगा, लेकिन शहर का ताल्लुक मुल्तान, तो मैं मुल्तान भी हाजिर होता रहता हूं, वहां बहुत ही अजीम शख्सियत हैं जनाब शाहरुख ने आलम साहब, जिन्होंने मुझ पर यह एहसान फरमाया था कि जब मेरी गाइडेंस नहीं थी कोई और मैं अपनी मर्जी से 40-42 वजीफे सुबह और 40-42 वजीफे शाम को पढ़ता था, तो क्योंकि गाइडेंस नहीं थी तो बहुत सी चीजें दिखाई देती थी, बहुत सी चीजें पेश आती थी, तो उनसे तंग आ गया। तो मैंने हजरत साहब से दरख्वास्त की थी फातिहा पढ़ने के बाद कि हजूर मेरे मुर्शद नहीं कोई, मुझे गाइडेंस अता फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जो वारदातें और जो मुशाहदात थे वो एक एक करके बंद होने शुरू हो गए फौरन। मुर्शद साहब मिल गए, वजाइफ छुड़वा दिए सब उन्होंने। तो ये नजर इनायत थी जनाब शाहरुख ने आलम साहब की। तो उनकी खिदमत में हाजिर होता हूं लेकिन वहां स्टे मेरा वही होता है, हार्डली एक मिनट डेढ़ मिनट। अब यहां से 214 माइल्स ड्राइव करके जाऊंगा एक या डेढ़ मिनट। हजरत बहाउद्दीन जिक्री रहमतुल्लाह अलैह साहब वहां हैं, आराम फरमा रहे हैं, वही एक मिनट या डेढ़ मिनट। जनाब शाह शम्स सब्ज़वारी साहब हैं, उनकी खिदमत में भी जरूरत ही नहीं पड़ती है इससे ज्यादा। एक सवाल किसी ने किया कि लताइफ को रोशन करने का तरीका क्या है। और इसी के साथ मुंसलिक एक और सवाल है उनका कि किसी इंसान को कैसे पता चल सकता है कि उसका कौन सा लतीफा रोशन हो चुका। हम लोग तालीम हासिल करते हैं और फर्ज कर लीजिए क्लास 5 में एक स्टूडेंट है, उसकी उसको जो तालीम दी जा रही है स्कूल में, जो टीचर उसे पढ़ा रहे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जोर नहीं है उनका, वो सिलेबस मजमुआ है मुख्तलिफ मजामीन का। और जब भी इम्तहान होता है, खा वो क्वार्टरली एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम हो, वहां ये नहीं देखा जाएगा कौन शख्स किस मजमून में बहुत ज्यादा आगे चला गया है। अगली क्लास में प्रमोशन के लिए जरूरी यह है कि वो ओवरऑल पासिंग मार्क्स ले चुका हो तमाम सब्जेक्ट्स में इक्वली। तो ये लताइफ असल में उस सिलेबस का हिस्सा है जो रूहानियत की तरफ ले जाते हैं। इससे मुराद हमारी ये नहीं होती कि हम एक लतीफे को किसी को ज्यादा रोशन करें, क्योंकि अगर ज्यादा रोशन करेंगे तो फिर तो बैलेंस आउट हो जाएगा। ये तो हमें पूरे का पूरा लेके चलना है। जिस तरह हम किसी जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो फर्ज कर लीजिए कि मैं ये कहूं कि राइट आर्म को मैंने ज्यादा डेवलप करना है, तो मैं उस पर काम करना शुरू कर दूं राइट आर्म पर, होगा ये कि पूरे की पूरी बॉडी मेरी दुबली पतली रहेगी, राइट आर्म बहुत मस्कुलर हो जाएगा, तो बजाय खूबसूरत नजर आने के मैं बदनुमा नजर आऊंगा। तो अगर हम एक लतीफे पर काम कर लें कि उसको रोशन कर लें, या तमाम लताइफ को, नौ के नौ लताइफ को हम रोशन कर लें, बाकी पहलू अगर हमारे रह गए कमजोर तो क्या होगा। तो ये एक पूरा सिलेबस है जिस पे आपको अमल करना है, और जिस तरह से स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि एग्जाम तो उसका एक एक सब्जेक्ट का होता है, लेकिन दर हकीकत वो टोटल पैकेज का एक हिस्सा है। तो हम ये नहीं कर सकते कि मैथ का एग्जाम दे दें और बाकी सब्जेक्ट से गायब हो जाएं। हम पास नहीं हो सकेंगे, प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो हमें सबके सब चीजों पर इकट्ठे काम करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो लताइफ को रोशन करना इतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी यह है कि हम वो रास्ते डिफाइन भी कर लें और उन रास्तों पर चलना शुरू कर दें जो रब की पसंदीदगी का बाइस बने। तो एक बार रब के पसंदीदा बंदे हम बन गए तो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो अगर कहीं अल्लाह ने हम पर और नजर इनायत कर दी तो पसंदीदगी के लेवल से बढ़कर हम दोस्ती में शामिल हो गए तो इल्म के दरवाजे खुल जाते हैं, और मजीद अल्लाह ताला अपनी खासुल खास रहमतें नाजल फरमा दे तो दोस्ती कुर्बत में बदल जाए, कि कुर्बे इलाही हासिल हो जाए। तो आंखें खुल जाती हैं और तमाम आलम उसके सामने रोशन हो जाते हैं। उसके लिए कोई दुश्वार नहीं है कि आपसे बात करता करता वह हालत कश्फ में चला जाए, आपसे बात करता करता आलमे अरवाह को देख ले, आपसे बात करता करता आलमे बरजख में नजर डाल ले। ये जरूरी ये है कि रास्ता हम वो इख्तियार कर लें जो रब के तरफ ले जाए हमें। ये चीजें खुद ब खुद हासिल हो जाएंगी। इन पर मेहनत करते करते इस्तेमाल ये है कि हम अमलियात की तरफ चले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं कि अमलियात कोई बुरी चीज है, मैं कतन कमेंट नहीं कर रहा उस पर, लेकिन बात यह है कि अगर रब की दोस्ती चाहिए कि मैं रब के पसंदीदा बंदों में हो जाऊं, रब के दोस्तों में शामिल हो जाऊं, शरीक कर लिया जाऊं उस फहरिस्त में, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए मुझे, और ये सब ख्वाहिश बगैर किसी गर्ज और लालच बेलौस हो, कि जो मोहब्बत है उसके तहत रब की कुर्बत हासिल कर रहा हो, कि जिससे मुझे प्यार है मुझे उसकी कुर्बत हासिल हो जाए। इससे आगे कोई गर्ज नहीं है, न जन्नत की लालच है न जहन्नम का खौफ। सिर्फ ये कि जिससे मैं प्यार करता हूं मैं उसके करीब चले रहा हूं। तो अगर एट द बैक ऑफ माई माइंड वो इश्क है और मुझे अल्लाह ने ये समझ अता अगर कर दी कि जिससे मैं इश्क करता हूं उसकी हर बात मुझे मानना है, तो लीजिए सब कुछ आपका खुद ब खुद ही हो गया। तो नजर उस पे रहनी चाहिए। इसी सिलसिले में एक सवाल ये है क्या लताइफ एक बार रोशन होने के बाद किसी गुनाह के सरजद होने से दोबारा जुल्मत में चले जाते हैं या वो हर हाल में रोशन रहते हैं। गुनाहों की स्याही अपना असर जरूर दिखाती है। यह और बात है कि अगर इंसान को एक झटका लगा और उसको अल्लाह ने रोशनी अता फरमाई है तो उस झटके को वो समझ गया कि मुझसे गुनाह सरजद हुआ था, तो जिसके नतीजे में ये सब पेश आया है मुझे, तो गुनाह से तौबा करता है तो वो स्याही इंसान के दिल से रब ताला मिटा देता है, रोशन रहते हैं लताइफ। फिर एक साहब थे, अगर जी आप सिर्फ एक मिनट है, लेकिन किस्सा जरा लंबा हो सकता है, दो चार मिनट में आपके फालतू ले लूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। एक साहब थे, अल्लाह ताला ने उन्हें वलायत के बहुत बड़े मकाम पर फाइज किया था। साहब वलायत भी थे, साहब इल्म भी थे, और अल्लाह ने उन्हें अपने मखलूक में मकबूल भी बहुत किया था। उनके पास आने वाले बड़े बड़े जय्यद आलिम थे, तो एक बार अपने शागिर्दों को लेके वो जंगल में डेरे डाले हुए थे कि दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना करें और वो अपने शागिर्दों को इल्म दिलजमई से देते रहें, बांटते रहें। उनकी बदकिस्मती ये कि जहां इन्होंने जंगल में डेरे डाले थे उससे कुछ फासले पर एक कबीला आबाद था। उस कबीले के लोगों ने देखा कि यहां कुछ फकीरों ने डेरा डाला है, तो फकीरों के साथ दिलचस्पी तो लादीन लोगों की भी रहती है। ये कमाल की बात है कि अल्लाह ताला ऐसे इन्हें बुलंद करता है कि लादीन लोग भी इनके पास जाते रहते हैं। तो वो लोग यहां आने लग गए इनके पास, क्योंकि मेहमान नवाजी तो फर्ज है, तो ये उनको वेलकम करते थे। इसी दौरान जो कबीले के सरदार थे उनकी बेटी इन्हें पसंद आ गई, तो इन्होंने सुन्नत के मुताबिक वहां पैगाम भेजा अपना। तो कबीले के सरदार ने, जो कि ईसाई थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे रिश्ता कबूल है, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा, लेकिन उसके लिए दो शराइत होंगी। एक तो ये कि आपको ईसाई होना पड़ेगा और दूसरा सुअर चराने पड़ेंगे। ये साहब अपने जज्बात से मगलूब थे और उस वक्त कुछ ऐसी आंखों पर पट्टी बंधी इनके कि इन्होंने दोनों शराइत कबूल कर ली और उस कबीले में जाके रहने लगे। अब इनके शागिर्दों को, जो खुद भी औलिया कराम थे, बहुत ज्यादा बेचैनी और परेशानी, वो इनके पास बार बार जाएं और इन्हें समझाने की कोशिश करें और ये डांट के उन्हें भगा दें, बिलाखिर वो वापस चले गए। एक इनके शागिर्द थे जो बहुत बड़े मकाम पर थे, उनसे जिक्र किया कि देखिए हमारे मुर्शिद साहब को क्या हुआ, तो हम समझा समझा के थक गए हैं, हमारे ख्याल में आप जाइए और जाके समझाइए मुर्शिद साहब को कि क्या किया आपने। मैंने कहा कि बस खामोश हो जाओ, छोड़ो, समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जब बना से समझूंगा चला जाऊंगा उनके पास। कुछ दिन के बाद इन साहब ने कपड़ों का एक नया जोड़ा खरीदा کچھ تحائف خریدے اور اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جا کے پہلا کام یہ کیا کہ بجائے سمجھانے کے بڑی پرتپاک مبارک بات دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے آپ کی نئی شادی, اور مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ شادی کر لی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو اب چونکہ لمبا سفر کر کے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات ادھر ہی رہ لو. انہوں نے کہا نہیں صاحب, میں اجازت لوں گا آپ سے, یہ کچھ تحائف ہیں آپ کی شادی کی خوشی میں, قبول فرما لیجئے. تو ان کے پاؤں میں انہوں نے نظر ڈھیر کر دی اور جوڑا پاؤں میں رکھا, کہا حضور یہ آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں, لیکن ان کپڑوں کے بارے میں میری ایک خواہش ہے آپ سے کہ مجھے پہن کے دکھائیے یہ آپ پر کیسے لگتے ہیں. تو انہوں نے وہ جو چوگا سا ایک لمبا پہنا ہوا تھا چرواہوں والا, وہ اتارا اور کپڑے ان کے لائے ہوئے کپڑے پہنے. اس سے پہلے غسل کیا کہ میل کچال صاف ہو جائے. تو جو غسل کر کے جب یہ کپڑے پہنے تو اب وہ ظاہر ہے انہیں کے سکھائے ہوئے شاگرد کے کپڑے لائے ہوئے کپڑے تھے. تو جو ہی وہ کپڑے پہنے ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ میں نے کیا کیا ہے. اسی وقت اللہ کے حضور سجدہ کر کے اللہ سے معافی مانگی, دوبارہ مسلمان ہوئے, مقام ان کو واپس مل گیا. پھر تو یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ انسان انسان ہے, اس کا پاؤں کہیں نہ کہیں پھسلتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, لیکن گناہوں کی سیاہی ایسی کمبخت سخت ہے کہ فوری طور پہ دل پر چڑھ جاتی ہے. لیکن رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, توبہ قبول فرمانے والا ہے. جو انسان توبہ کرتا ہے سچے دل سے, شرمندہ ہوتا ہے, رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اب آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی اتوار تک کے لیے, بشرط زندگی اجازت. السلام علیکم.